बोलो
का रिव्यू देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं मेरे पास भी कि जी हमारे हमें कहीं पे कोई पैसे मिल गए, कोई गिरी पड़ी और कोई ऐसी चीज़ मिल गई, अब इसका क्या किया जाए। तो बहुत ही अहम टॉपिक, वो टॉपिक जो हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक है। बाज़ दफ़ा तो हम कोई चीज़ देखते हैं तो इसको गुनाह समझते हैं कि हम अगर उठाएंगे तो हमें सख्त गुनाह होगा, इसलिए हम पड़ी रहने दें। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ उठा ली जाती है और फिर समझ में नहीं आता कि इसका करें क्या, तो ले दे के हम फिर या तो मस्जिद में डाल आते हैं या कुछ ऐसी कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर से ये रहनुमाई लेंगे कि हमने जो गिरी पड़ी चीज़ है उसके साथ क्या मामला करना है, क्या हम उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, उठाएं तो क्या करें। जी शाजिया नासिर, आप बताएंगी कि अगर कोई गिरी पड़ी चीज जो वैल्यूएबल है तो उसके साथ क्या मामला किया जाएगा। मसलन आपको कहीं से कोई कंप्यूटर मिल जाता है, कहीं कोई आपको किसी की सोने की रिंग पड़ी हुई मिल जाती है, ऐसी कोई चीज के साथ आपका क्या मामला होगा।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी उसको हम सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह देखभाल लें कि वो किस तरह की चीज़ है, और फिर उसको लोगों में ऐलान करवाया जाएगा, मस्जिद या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मतलब हम जाके कह सकें, किसी जगह पे उसका ऐलान करवाएं कि हमें ये मिली है चीज़ फलां फलां। और इसके अलावा फिर जहाँ से मिली है किया जाए कि वहीं इस इलाके के आसपास ही ऐलान करवाया जाए, और अगर स्पेशली कोई वैल्यूएबल है तो उसको तो एक साल तक मुस्तकिल ऐलान करवाना चाहिए, और फिर अगर फिर भी कोई नहीं आता तो फिर दोबारा ऐलान साल तक करवाया जाए। जैसे हमें हदीस से पता चलता है 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया था कि आप ये ऐलान करवाते रहें ज़ैद बिन खालिद को।
जज़ाकअल्लाह खैरन। अभी तो फिर हाल हम इसको यही देखते हैं, ये हम बाद में देखेंगे कि कितनी देर तक ऐलान कराना चाहिए। जो इन्होंने बात कही कि वो चीज़ अगर वैल्यूएबल है तो फिर हम उसको ऐलान करवाएंगे, मगर एक चीज़ जो आपने कही इसमें कि मस्जिद वगैरह में, मस्जिद में आप गुमशुदा चीज़ का ऐलान नहीं करवा सकते। हमारे यहाँ बच्चा गुम हो जाता है, कुछ हो जाता है, मस्जिदों में ऐलान होने लगते हैं जी फलां बच्चा ये कमीज पहनी हुई इतने कद का ये रंग है और जी वो गुम हो गया, तो किसी को पता हो, ये चीज़ करना मस्जिद में जायज़ नहीं है। ऐलान करना है जो वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से आपको चीज़ मिली हो, उसके इर्द गिर्द की जगह पे ही ऐलान होना चाहिए कि भाई किसी की ये कोई चीज़ है, मसलन बाजार से गुजर रहे हैं रास्ते में इस तरह से। अब ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जी, न्यूज़पेपर में भी लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन होता है, शाबाश वहाँ पे भी ऐलान कर सकते हैं, और कुछ जगह पे इश्तहार दे के या कुछ ऐसा ऐलान हो सकता है, बशर्ते कि ये ना हो कि वो जो ऐलान है वो उससे भी ज़्यादा महंगा हो जितने की वो चीज़ है। ठीक है, तो एक तो ये, अच्छा ये आप मुझे पेल टॉक पे आप लोग जवाब देंगे या लाइव ब्रॉडकास्ट पे, कि मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि एक खातून को कोई चीज़ मिली है, वो लॉन्ड्री है पब्लिक जैसे होती है जहाँ पे उसको कुछ पैसे मिल गए थे, अब वो क्या करेगी। ये मुझे पेलटॉक पे और लाइव ब्रॉडकास्ट पे आप लिख के बताएं सब लोग ही, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं आई, ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो किधर खड़ी होके ऐलान करे, क्या वो जाती रहे वहाँ पे रोज जाके ऐलान करे, वहाँ पे कोई ऑफिस नहीं था, बस लॉन्ड्रो मैट वगैरह होते हैं ना, बस मशीनें लगी हुई थी और वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा नहीं था। यही सबसे पहले मेरा भी सवाल था। जज़ाकअल्लाह खैरन। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ऑफिस में जमा करा दे, लेकिन वहाँ पे अगर कोई ऑफिस ना हो जी, कोई स्टिकी नोट, कोई इश्तिहार, कोई इस तरह से नोट सा जो होता है वो लगा दे वहाँ पे, बिल्कुल पोस्टर लगा दे, लॉस्ट एंड फाउंड का फ्लायर लगा दे, बिल्कुल सही, और उसको लॉन्ड्रोमैट में डाल लगा दे। अब उसका ये सवाल मुझसे था कि जी वो ऐसा इलाका है जहाँ पे तो हर कोई आ जाएगा ये कहने के लिए कि हमारे ही पैसे थे, हमारे ही पैसे थे, तो इसमें क्या किया जाए फिर, ये बताएं जी। आइडेंटिफिकेशन जैसे वो ये जरूरी नहीं लिखें कि मुझे $50 यहाँ से मिले, ये लिख सकती है व्हाट क्लोथ्स थे, नहीं क्लोथ्स नहीं थे, कैश था, $50 थे जी। निशानी भी तो नहीं $50 की कुछ ली जा सकती, हाँ मगर ये था कि मैंने यही बात बात हम जो कर रहे हैं, निशानी या कुछ पैसों की तो नहीं हो सकती, मगर ऐसे हो सकता था कि आप ये लिख सकते हैं वहाँ पे कि ये किसी के पैसे अगर गुम हुए हैं तो अब आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई कितने पैसे थे, हाउ मैनी, बिल्कुल शाबाश, कि कितने पैसे थे जो आपके गुम हुए हैं, और फिर क्या वो अलग अलग नोट थे, कितने नोट थे, या एक साबुत एक $50 का नोट था जिसको जिसके गुम हुए हैं वो इस नंबर पर कॉल कर ले, तो इस तरह से करके कुछ आप वो कर सकते हैं। अच्छा अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी कितने अरसे तक वो इसका इंतजार करेगी, कब तक ये होगा, शहादी आप बताएंगी, आपका फोन
जी। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर अगर कुछ पता नहीं चला तो फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं, बहुत तीन चार बार, तीन तीन दफा और चौथी चार के बाद फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन दफा ऐलान करें और फिर और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
तीन दफा ऐलान करें
ना, तीन साल, एक एक साल के बाद,
हाँ जी तीन जी, साल तीन जी, साल, और अगर एक साल ऐलान करें,
एक साल का भी है कि एक साल तक अगर कोई आ जाए तो एक साल तक भी है, लेकिन अगर वैल्यूएबल चीज हो तो इसके लिए तीन साल तक है
जी। नहीं एक साल भी सही है। अब ये पैसे जो देखें, ये नोट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पुराना हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, वो दो साल भी तीन साल भी इंतजार कर सकती हैं, चार साल तक इंतजार कर सकती हैं, मगर इसके लिए उसको बार बार जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका फ्लायर वहां पे लगा है या नहीं है, चलो लेकिन एक साल तो इंतजार करें। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब कोई वैल्यूएबल चीज हो जी, आफ्टर टू थे वैल्यूएबल चीज हो, जैसे अब ये $50 थे, मतलब कोई आम छोटी चीज नहीं थी, तो तब तो ये होगा। और अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि खास अहमियत की हामिल नहीं है तो फिर राहत आप बताएंगी फिर क्या करें, मसलन है $1 गिरावा मिल गया, 50 सेंट गिरे हुए मिल गए, क्वार्टर गिरावा मिल गया, ऐसी चीज मिल गई तो
जी, रास्ते में पड़ी हुई ऐसी चीज कोई मिल गई तो वही आप कह रहे हैं कि अब $1 या 50 सेंट सामने करंट लगा का, तो पहले तो उसका ये है कि वही बात है कि फ्लायर लगा लें तो ये तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपने पहले उसको गुमशुदा को जैसे फ्लायर लगा के जहाँ से स्टोर से मिला कुछ भी है, जब उसका भी वही बात आ जाती है आइडेंटिफिकेशन, जैसे ऐलान करें जब फ्लायर लगाएं, ऐलान नहीं करें फ्लायर लगाएं जहाँ से आपको मिली है, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए, साल भर करें, वही एक साल तक करें, अगर उसका मालिक आ जाता है मिल जाता है तो उसको जरूर दें, और जब देने लगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूर उससे कुछ पता उसका ले लें। जैसे मैं अपना थोड़ा सा बताऊंगी कि मुझे ऐसे ही एक पर्स मिला था बहुत साल पहले तो उसमें मैंने पर्स खोला तो वो कार्ड पे पड़ा हुआ था, मैंने फिर अंदर से देखा तो मुझे कुछ मिल गया, उसका कार्ड मिल गया, तो मैंने उस साहिबा को कॉल की तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर उन्होंने टाइम बताया, फिर वो हमारे घर आए, हमने उनका सारा कुछ उनको उसी तरह हमने कहा कि हमारे सामने आप अपनी रकम सारा कुछ कार्ड क्रेडिट कार्ड भी देख लें, तो जब उनको प्रूफ हमें मिल गया कि ये वाकई वही है क्योंकि उनकी पिक्चर थी सारी, तो फिर हम उसी तरह हमने उनको दिया। तो इस तरह आपने प्रूफ लेके कुछ करके देने, अगर प्रूफ नहीं भी है ना तो फिर अगर आपको कोई नहीं मिलता तो फिर आप जैसे वही सदका के कहीं चीज पे करते हैं, फिर अल्लाह को तो पता है ना, फिर और तो कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं।
यानी आप अगर कोई वैल्यूएबल चीज है अगर आप चाहें तो उसको फिर एक साल बाद या दो तीन साल बाद उसके बाद खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी है कि अगर आप चाहें, जैसे उन खातून ने यही चाहा कि नहीं मैं मस्जिद के अंदर इसको डाल देती हूँ, तो उन्होंने वो $50 मस्जिद में डाल दिए। अब बाज़ दफ़ा इंसान का दिल नहीं मानता कि नहीं मैं बस नहीं करना चाहता, वो उसको लगता है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, तो यानी कोई ज़रूरी नहीं अब उसने इस्तेमाल ही करना है तो फिर वो होगा,
उसके अलावा भी अगर यानी वो समझता है कि नहीं मैं नहीं चाहती या मेरे पास मुझे ऐसी कोई हाजत नहीं है, वो उसको डाल सकता है। इससे एक और बात इसमें बताऊंगी। अच्छा, पहले ये मुझे आप बताएंगी सबाहत के अगर मामूली नौयत की चीज हो फिर आप क्या करेंगे? यही जो जैसे मैंने इनसे पूछा है, एक डॉलर मिल जाता है, एक आपको क्वार्टर मिल जाता है, एक कोई ऐसी पेंसिल मिल जाती है। जी सबाहत, आप अनम्यूट हुई है जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए
जी। उसके लिए ये है कि 3 दिन तक आप ऐलान करेंगे और फिर आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं।
जी, उसके लिए 3 दिन तक ऐलान करेंगे, ठीक है। ये बात को समझना है कि 1 साल तक उसके लिए नहीं ऐलान करेंगे, उसके लिए बस इस तरह से 3 दिन तक ऐलान करेंगे और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज कहते हैं कि उसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बोथ चॉइसेस आर देयर कि कोई पेंसिल है, कोई ऐसी चीज है, तो दोनों चीजें हैं। 3 दिन तक ऐलान करना भी है और उसके बाद ये कि आप उसी वक्त भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो रामा की बहुत शुरू में एक दफा पिकनिक हुई थी, उसमें किसी की कोई ये जो शीट नीचे जमीन पे बिछा के बैठने के लिए कोई लेकर आया था और वो रह गई। अब उन्होंने मुझे दे दी, जो भी वहां पे सारे थे उन्होंने कहा कि आप रख लें। अब मैं इतने दिन लोगों से पूछती रही कि कोई है, किसी की तो नहीं है, किसी की तो नहीं है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। तो वो फिर अभी तक मेरे पास पड़ी भी, फिर मैंने उसको वैसे ही उसके अंदर डाल दिया, डोनेशन में या जो भी होता है उसमें डाल दिया, क्योंकि अब कोई भी मिल नहीं रहा था। ऐसी मामूली नौयत की, यानी क्लास में भी उसका अनाउंसमेंट किया गया ये सब, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। देन लीव एज इज, मे बी ओनर विल कम एंड गेट इट बैक। ऐलान तो हो ही सकता है चीजों का फॉर वैल्यूएबल, ये मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्या फिर आपको वहीं छोड़ना चाहिए या नहीं। ये आप फिर सर से पूछ लें कि क्या उसको छोड़ दिया जाए वहीं पे तो वो ज्यादा बेहतर है, या क्या चीज इसमें करनी ज्यादा बेहतर है। अगर आप अनाउंसमेंट ही नहीं कर सकते और आप समझते हैं ये फैसल में कौन पड़े, कौन इसको ऐलान करता फिर, ठीक है। तो अब आप ये बात समझ आ गई कि अगर वैल्यूएबल चीज है तो 1 साल से लेकर फिर आप 4 साल तक ऐलान की बात हमें मिलती है हदीस से। अगर इनवैल्यूएबल चीज है जो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू की नहीं है, अब ये छोटी छोटी चीजें अब क्या है इनकी वैल्यू पर, पेन पड़े होते हैं अगर मस्जिदों में ऐसे गिरे हुए हैं, आप उठा के आपने लिखना शुरू कर दिया, ओ चलो यहाँ पे ये पेन पड़ा हुआ है, लाओ मुझे कोई चीज लिखनी है। अब मैं खड़ी होकर 3 दिन तो नहीं मस्जिद में ऐलान करती रहूंगी कि भाई ये चीज किसी की गिर गई है, कोई है तो वो ले ले, तो उसको उठा के यूज कर लिया आपने। वैसे भी मस्जिद में गुमशुदा चीज की ऐलान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को फिर बेहतर ही है कि फिर ना आप ऐलान करें, आप जब ऐसी जगह हो तो फिर आप यूज कर लें। मगर हाँ, जो कोई ऐसी और जगह है जहाँ पे आप ऐलान कर सकते हैं तो फिर 3 दिन ऐलान करना। बाद में हम किसी ऐसी दावत पार्टी में जाते हैं, अब उसके बाद लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो भी नहीं पता चलता। अब किसमें ऐलान आप करेंगे, जो लोग आए या होस्ट को बता दिया जाता है भाई आप लोगों से पूछ लें, मुश्किल ही लोग कोई मिला करते हैं ऐसी उसके अंदर। तो अगर इनवैल्यूएबल चीज होती है तो फिर आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब राजिया आप बताएंगी कि जानवर के बारे में, ऐसा जानवर जैसे कोई ऊंट हो तो उसके बारे में क्या आप बताएंगी कि उसके साथ क्या किया जाए अगर वो मिल जाए, सिर्फ ऊंट का बता।
जो सादा ऊंट चूंकि खुद सस्टेन कर सकता है, पानी पी सकता है, उसके अंदर कुहान के अंदर उसके पानी स्टोरेज होता है, वो खा पी सकता है, तो उसको फिर छोड़ देना चाहिए।
अब सही है, ऊंट चूंकि खुद तो उसको सर्वाइवल का कोई मसला नहीं है, वो उसका मालिक उसको आखिर एक दिन ढूंढ ही लेगा, तो ऐसी चीज को फिर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इससे हमें पता चलता है जब जैसे ये कॉइन्स कह रही हूँ, जो कैश वगैरह गिरा होता है अगर वैसे भी छोड़ देंगे तो वो तो फौरन ही कोई उठा लेगा और हो सकता है फिर इधर उधर ही कर दें कोई। लेकिन बाहर क्या ये क्वेश्चन का अच्छा है, आप सर से पूछिएगा इसका। अच्छा, इन स्कूल दे हैव लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, बिल्कुल स्कूलों वगैरह में तो बहुत आसानी है क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड के सेक्शन होते हैं, या बाज जगह पे मस्जिद वगैरह में भी उन्होंने डब्बे रखे होते हैं, किसी की टोपी, किसी का ग्लव गिर गया, किसी का कोई कुछ है वहां पे डाल दिए, तो वो तो आसानी हो जाती है। बाज जगह पे ये इतना आसान नहीं होता। जी, इस हदीस में आपने पूछा कि कितने उसका, 3 या 4 साल का, इस हदीस में तो 4 साल का मिलता है। ठीक है, जो 1, 1, 2, 3, 2, 4 है. That if you can't make necessary turn, then leave as is. ठीक है, फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए. अच्छा जी, नसरीन आप बताएंगी कि कोई बकरी वगैरह है जैसे, जो के मतलब छोटा जानवर है, ऐसी कोई चीज अगर किसी की बकरी, मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई ऐसी बकरी गुमशुदा सी मिल गई है, तो फिर उसका क्या करना चाहिए?
जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. बकरी का ये है कि वो मिल जाए ना, तो उसको तो भेड़िया खा जाएगा, तो उसको आप ला सकते हैं साथ ना.
जी सही
जी. ऊंट वगैरह तो अपनी, बड़ा जानवर हो ना तो अपनी देखभाल कर सकता है, तो फिर ये तो अपनी जवाबदेही पर है कि अगर देखे मालिक ढूंढा हुआ आ जाए तो दे दें, तो नहीं तो फिर उसका.
सही, यानी आप ले आए और उसके बाद क्या करें, खुद इस्तेमाल कर लें या फिर क्या करें?
नहीं नहीं, फिर भी वो ऐलान तो करते रहे ना, कि बातों का तो गांव वगैरह में पता होता है कि किसकी बकरी खोई है ये कुछ.
सही, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा. अच्छा, ये आप बात अहम इस लिहाज से है कि यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हमारे मुल्कों में कुर्बानी के जब दिन करीब होते हैं तो इस तरह से कोई जानवर ऐसे किसी का खुला हुआ छूटा हुआ आ जाता है, तो आपको पता होता है कि ये किसी का कुर्बानी का जानवर है जो गुम हो गया था. तो ये नहीं है पकड़ के अब हम खुद अपने पास बांध लें और उसको कहें कि चलो अच्छा हमें मिल गया, हमें तो मिला था ना कहीं से, हमने तो नहीं लिया, हमारे घर के पास चल रहा था तो हमारा हो गया, ऐसा नहीं है. फिर भी आपने पहचान करवा लेनी है, यहाँ पे अब कोई भेड़िए वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पहचान जरूर करवा लेनी है, कि वरना ऐसी किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी, कुछ मर जाएगी. भेड़िया नहीं भी है तो कोई और एक्सीडेंट हो सकता है उसके साथ, वो छोटा जानवर है तो अपना वो खुद नहीं केयर कर सकती. अब आपने लेके फिर उसकी पहचान जरूर इलाके में करानी है कि ये किसका जानवर है. ठीक है, तो इसमें भी ये नहीं है कि फौरी तौर पे इस्तेमाल किया जाए या ऐसे, अपने तौर पे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो उस मालिक को मिल जाए. अच्छा जी, राशिदा कालिया आप बताएंगी कि अगर किसी जानवर को जो दूध देने वाला जानवर है कहीं मिल जाता है, तो क्या उसका दूध निकाल सकते हैं?
जी उस्ताद, क्योंकि उसकी उस पर जो चारे वगैरह खर्चा है तो वो अपना फायदा उठा सकता है जब तक उसका मालिक नहीं मिलता ना. हेलो.
हाँ जी जी, यानी मसला नहीं, आप उसको घर लाने की बात नहीं मैं कर रही, अगर रास्ते में है कहीं जा रहे हैं, कोई गाय वगैरह है, वो पता है कि दूध देने वाली है, तो थोड़ा दूध अगर निकाल लिया जाए और ले लिया
नहीं,
जाए.
नहीं नहीं साजा, वो बगैर मालिक के पूछे हम किसी का दूध नहीं दो सकते, क्योंकि उसकी परमिशन के बगैर नहीं कुछ कर सकते हम ना.
जी जी, यानी अब मालिक की रजा के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, देखें जानवर तो कई चरते हुए कहीं मिल सकते हैं, और खास तौर पे ऐसी जगहों पे गांव वगैरह में तो कई जानवर ऐसे खुले ही फिर रहे होते हैं, कोई थोड़ी उनको हर वक्त कोई देख रहा होता है, भैंसें गायें इधर उधर घूम रही होती हैं, तो उनका कोई पकड़ के दूध निकाल ले थोड़ा सा, कि चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे है खड़ी हुई तो चलो दूध निकाल लेते हैं, तो ये जायज नहीं है. इससे हमें पता चलता है कि किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी की भी चीज के अंदर तसर्रुफ करना ये हरगिज जायज नहीं होता, चाहे उस वो चीज हमारे सामने कहीं मौजूद हो और हमें कोई भी नहीं देख रहा और उसका मालिक भी मौजूद नहीं है, तब भी हम उसमें से इतना सा भी अपने लिए कोई फायदा नहीं ले सकते उसकी इजाजत के बगैर. हालांकि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई वो जानवर पकड़ के अपने पास नहीं बांध के ला रहे, दूध ही है ना, दूध तो बाद में भी और आ जाएगा, कौन सा सारा ही निकाल लेना, हमने थोड़ा सा तो लेंगे, थोड़ा सा तो करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते. यानी इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि अमानत में खयानत हो जाती है ये. अल्लाह अकबर. अच्छा जी, अब है किससे, नहीं मैंने सवाल पूछा जी, यास्मीन इकबाल आप बताएंगी कि मेहमान नवाजी कितने दिन की होती है, और
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी
जी, आपने मेहमान नवाजी का सवाल पूछा, पीछे लाइन वो गई थी. جی مہمان نوازی کا یہ ہے کہ موافق کے اس حساب سے کہ ہر طرح عزت کرے اور اس کی دستور کے مطابق اس کی عزت کرنی ہے, اور ایک دن اور ایک رات اس کی جو ہے وہ میزبانی تین دن کی ہے اگر آپ کے گھر کوئی آ جاتا ہے تو, اور اگر اس کے علاوہ آپ کرتے پھر وہ آپ کے اوپر صدقہ ہے. ویسے انسان کو اتنے لمبا مہمان
دن اور ایک رات ہے یا تین دن ہے یا کیا ہے؟
نہیں, تین دن اور تین رات ہے. جو اس حدیث کے حساب سے ہے کہ جو انہوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا دستور کے موافق کب تک ہے, تو فرمایا ایک دن اور ایک رات. ویسے میزبانی
موافق جی کیا چیز ہوتی دستور کے موافق؟
ہاں آپ سے سوال تھوڑی کیا, زیادہ اس کی اچھی مہمانی کی جائے وہ ایک دن اور ایک رات ہے, بہت زیادہ عزت کی جائے. اس کے بعد جب ریگولر میزبانی وہ تین دن اور تین رات, تین دن کی سوری.
ہاں
جیسے آپ پہلے دن میرے گھر آئے میں آپ کو بہت زیادہ پہلا دن عزت کیا, خیال کیا, ویسے تو ہر وقت میں آپ کی کروں گی, مگر پھر اس کے بعد میزبانی آپ کی تین دن ہوگی, اس کے بعد آپ میرے گھر آ کے رہیں گی تو میں آپ کی عزت سے محبت سے رہوں گی, اور پھر وہ اپنے ایمان کے مطابق, اور پھر وہ میرا صدقہ ہو جائے. آپ آ رہی ہیں؟
جی اچھا جی میں چیک کرنے کے لیے پھر آؤں گی, دیکھنا پڑے گا. اچھا جی یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو بتایا گیا کہ جو فرسٹ 24 آورز ہے نا, ایک دن اور ایک رات, اس میں تو زیادہ ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو اسپیشل کرنا ہے. یہ حدیث اس لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو مہمان نوازی میں اس قدر ایگزیجوریشن کرتے ہیں, اتنی ایگزیجوریشن کرتے ہیں کہ وہ مہمان کیا آ جاتے ہیں سمجھ لیں ان کے لیے بوجھ اپنے آپ کے لیے خود بنا لیتے ہیں. ہمارے دین نے نہیں بنایا, ہم خود اپنے لیے بوجھ بنا لیتے ہیں کہ جب مہمان آئے ہوئے تو اب ان کو ہر کام دوسرا چھوڑنا پڑتا ہے, نہ وہ کوئی اپنا قرآن صحیح کر سکتے ہیں, نہ وہ نماز صحیح سے پڑھ سکتے ہیں, نہ وہ کوئی کلاس لیتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں. ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں تو مہمان کا کتنی مہمان نوازی ہے, پہلے دن ہی ہے جو بہت اسپیشل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہر دن آپ دو دو تین تین کھانے بنا کے رکھیں, سبزی بھی ہو, گوشت بھی ہو, میٹھا بھی ہو, پٹائزر بھی ہو, یہ بھی ہو, فلاں بھی ہو. یہ پہلے دن تو کیا ہی کیا, دوسرے دن بھی یہی, تیسرے دن بھی یہی, ناشتے بھی حلوہ پوریاں چل رہے ہیں, دوپہر کو بھی کھانا ہو رہا ہے, رات کے پھر بھی ہو رہے ہیں, شام کی چائے میں بھی اسپیشل ہو رہا ہے. یہ چیز نہیں ہے. دیکھیں اس کے بعد دو دن جو آپ نے کیا اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہے, اچھا کریں دو دن, مطلب جو آپ کا ہوتا ہے ایک اچھا آپ نے واجبی سا کیا. مگر جب تین دن ہوگا, پہلے دن آپ نے اسپیشل کیا تھا, اس کے بعد کے دو دن آپ نے اس سے تھوڑا کم کیا مگر پھر بھی اسپیشل کیا, مگر تین دن کے بعد جو آپ گھر میں کھاتے ہیں بس وہی کھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پھر صبح کے وقت میں کچھ اسپیشل چیزیں بن رہی ہیں, ہوٹلوں سے کھانے آ رہے ہیں, دوپہر کے وقت بھی کچھ ایسا چل رہا ہے, شام کو بھی پھر چائے کے ساتھ اہتمام ہو رہے ہیں, رات کو بھی پھر کچھ ہو رہا ہے, پھر شام کو سوتے سوتے بھی ان کو کچھ دیا جا رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کھانا جو گھر میں نارمل بناتے ہیں وہی بنائیں, اور ان کو کچن کا راستہ بھی دکھا دیں کہ یہ یہاں پہ پلیٹیں پڑی ہیں, یہاں پہ یہ ہیں, آپ گھر کی طرح سمجھیں اور آپ کھائیں پئیں جتنا بھی, بہت اچھی طرح رکھیں, عزت بھی دیں اور ان کو بتا بھی دیں یہاں یہاں یہ سب کچھ ہے, آپ بالکل اپنے گھر جیسا فیل کر کے اور آپ رہیں. لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہ کہ جب ہم نہ ان حدیثوں کو جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, تو جب ہم مہمان بنتے ہیں تب بھی ہم اتنا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جب ہم کسی کے گھر جاتے تو کہتے ہیں اب یہ ہمارے سامنے ہی بچھا رہے اور اس نے کیوں نہیں ایسا کیا. ٹھیک ہے, ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں پانچ دن یا ہفتہ کسی کے گھر رہنے گئی ہوں تو ہفتے بھر وہ میری مہمان نوازی میں سر نیچے اور پیر اوپر کر دے, یہ نہیں ہے. وہ اپنی روٹین چھوڑ دے, وہ اپنے سارے کام چھوڑ دے, باقی دنوں میں جو صدقہ ہے نا, یعنی وہ یہ ایسے کہ صدقہ ہے, اس کے بعد جو بھی آپ اس کو کھلا پلا رہے ہیں وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے مہمان کو بھی کوئی اتنے دن کے اوپر جا کے کسی کے اوپر ایسے بوجھ نہیں بن جانا چاہیے کہ وہ اس سے اتنا کچھ ڈیمانڈ کرے. اب وہ جو کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ نیکی کر رہا ہے, اگر اس کے لیے کھانا رکھ رہا ہے میز پہ رکھ رہا ہے, یا اس کے لیے کھانا گرم کر رہا ہے, یا کچھ اس کے لیے کوئی اسپیشل اس نے آج کوئی چیز کر لی, تو وہ صدقہ ہے اس کی طرف سے. مگر یہ اس کو روٹین نہ بنائیں کہ آپ ایوری ڈے مہینے بھر کے لیے کوئی مہمان آ گئے, خاص طور پہ ہمارے یہاں سمرز میں آتے ہیں
तो हम महीना भर के लिए बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं और हर जगह हमारी एक ही बस वो होती है कि हमारे मेहमान आए हुए, हमारे मेहमान आए हुए, और उन मेहमानों की वजह से हम बहुत सारी नेकियां करने से महरूम रह जाते हैं। तो इस चीज को अगर हम भी समझ लें, और जो मेहमान बन के आते हैं उनको तो नहीं हम चलो समझा सकते, मगर हम ही चलो जब मेहमान बन के जाते हैं तो प्लीज एक्सपेक्ट मत करें। ये एक्सपेक्टेशन पहले दिन तक रखें, उसके बाद दो दिन वो करें बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद तो सदका है उनकी तरफ से, ठीक है। अब अगर आपके घर उसके बाद तीन दिन के बाद दाल चावल पकते हैं तो वो दाल चावल ही खाएं। अगर आपके पास सिर्फ शाम को चाय ही पीते हैं, उसके साथ कुछ और नहीं लेते, तो सिर्फ चाय ही उनको दें। अब आपको कोई ऑल द वे जाने की जरूरत नहीं है कि आप वो बिल्कुल आप कोई अपने स्पेशली डिनर सेट निकालें, स्पेशली एवरी डे वो चीजें निकाल रहे हैं, फिर उनको धो रहे हैं, फिर उनको रख रहे हैं, फिर आप जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे रहते हैं। और उनको भी नॉर्मल करने की कोशिश करें, हम खुद भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, मेहमान को भी एबनॉर्मल कर देते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट भी वैसे ही करते हैं, और तो इससे सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और इन द एंड होता पता है क्या, कि वो ही मेहमान हमें लगते हैं कि ये एक बोझ है, ये आ गए तो फिर जाहिर ही बात है फिर बोझ ही लगेंगे, क्योंकि अब हमें पता होगा कि अब जब ये आए तो फिर हमारे लिए मुश्किल है, तो हम खुद ही उनको बोझ बना लेते हैं। अगर हम इस तरह का तरीका है रखें तो ना मेहमान हमारे लिए बोझ रहेंगे, हम उनको अच्छी तरह वेलकम भी कर सकेंगे, हमारी बाकी काम जिंदगी के जो मामलात हैं वो भी चल सकेंगे, जिंदगी आसान रहेगी, हम खुद मुश्किल करते हैं। इसी तरह मेहमान जब भी जब बन के जाएं तो तब भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती तीन दिन। अगर आप हम खुद हमने ये हदीस आप पढ़ लिया तो हम अपने मेजबान को भी ये हदीस बता सकते हैं कि देखिए इसके बाद आपको ऐसा मेरे लिए कोई खास इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, और ये हदीस है, ये तो कर सकते हैं ना। तो देखिए दीन की तरफ आने में हमारा कितना बड़ा फायदा है, कितनी हमारे लिए आसानियां हमारा दीन दे देता है। तो एक मैंने आपको बताया ये एक्सट्रीम है कि जो फिर बाजी नहीं आते वो फिर इतना एहतमाम करते हैं। दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि अगर उनके घर पहले दिन भी चले जाओगे तो वो वही जो खुद खा रहे होंगे वही आपके सामने रख देंगे, अच्छा चले आप भी खा लें, या फिर पूछेंगे ही नहीं, या फिर ये करेंगे आप खुद ही जाके निकाल लें जो आपको खाना है। अच्छा कुछ खाना भी है आपको, अच्छा चलें फिर आप आपको दे देते हैं, ये नहीं। यहाँ पे खास तौर पे उन मेहमानों की बात आ रही है जैसे आप देख रहे हैं जो आपके लिए घर में स्टे करने के लिए आते हैं, तो फिर पहले दिन ये होगा दूसरे दिन तीसरे दिन। इस्लाम ने हमें कितनी रहनुमाई दी है कि हर हर चीज में रहनुमाई है। इसके बाद कोई तीन दिन के बाद कोई खास एहतमाम कोई भी नहीं करेगा तब भी उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, तब भी इस मामले में उससे पूछ नहीं, मगर ये चीजें ये हैं जो तौक हमने अपने गलों में डाले में खुद डाले में। और जो लोग नहीं करते उनके लिए भी इसमें लेसन है कि पहले दिन तो उनको करना ही करना है, ऐसे नहीं कि जो भी घर में पकाया हुआ चलो एक ही जो सालन बनाया हुआ वही अब रख दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखे बछड़ा जाके भून के लेकर आए थे मेहमानों के लिए जो फरिश्ते आए हुए थे, नहीं खास एहतमाम हमें नजर आता है अंबिया से भी सहाबा कराम की उनसे भी कि जो कुछ भी उनके पास होता था उसमें ही जो भी स्पेशल है वो तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, फिर भी जो भी स्पेशल होता था वो मेहमान के लिए करते थे। तो जो लोग बिल्कुल ही इस चीज से बेपरवाह रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता घर में मेहमान आया है उसको कुछ खाना पीना पूछना है नहीं पूछना, क्या करना है, उसके खाने का कोई टाइम है या उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना है, उनको कोई परवाह नहीं होती, ऐसे भी नहीं होना चाहिए क्या। उसके बाद भी दो दिन आपको खुद मेहमान के लिए फिक्र करनी है और फिक्र करके उसके लिए एहतमाम करना है। अच्छा ये जो चीजें हैं ये एकामात किस चीज के साथ मशरूत किए गए हैं कि और कौन है जो यहाँ पे जिससे मैंने नहीं सवाल किया जी, अब सर आप बताएंगे ये किस चीज के साथ मशरूत हैं, कौन सी कंडीशन है जिसके साथ ये दिए गए अहकामात के जो बात करें वो अच्छी करें या फिर खामोश रहें और मेहमान की इस तरह की मेहमान नवाजी हो, तो ये किस चीज के साथ मशरूत है
जी। उस्तादा देखें कि यानी कि हम इसको इस बाब में पढ़ रहे हैं ना कि बाब लुखा था, तो ये मतलब इसी के साथ इसको किया गया है ना
के लिए, यानी मेरा कहने का मकसद ये किस इंसान के लिए ये अहकामात किसको दिए गए हैं।
ये तो मेजबान के लिए एहकामात है।
ये एहकामात किस इंसान के लिए?
जो मेजबान होगा उसके लिए एहकामात है ये।
नहीं, मेजबान तो है, एक वो भी है ना कि जो बात करे वो अच्छी करे, नहीं तो खामोश रहे। तो ये दोनों एहकामात कौन से इंसान?
ये जो यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और अल्लाह ताला पे ईमान रखता हो उसके जी, अल्लाह पर और यौम आखिरत पे जो ईमान रखता है उसके लिए एहकामात है।
के लिए ये अहकामात हैं। तो अब आप देख लें, जज़ाकअल्लाह खैर, अब आप देख लें कि क्या हम अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखते हैं। अगर रखते हैं तो फिर हमारे लिए ये अहकामात हैं। अगर जो नहीं रखता तो फिर वो ठीक है, जो मनमानी आए करे, फिर अपनी मर्जी आए करे। कितनी बड़ी बात कह दी गई है। आम ऐसे ही ये भी कहा जा सकता था कि जो भी हर एक को चाहिए कि वो मेहमान की इज्जत करे, हर एक को चाहिए कि वो अच्छी बात करे, मुंह से अच्छी बात निकाला करो, ठीक है। लेकिन जब ये कह दिया गया ना, अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता हो जो वो ये करे, तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। फिर ये मामूली बात नहीं है, ठीक है। ये इशरत, आपको कोई सवाल है? ठीक है, अभी मैं आपकी लाइन ओपन करती हूँ। आप अच्छा यहाँ पे है जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं?
जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा। सर ने ये इसके साथ ये भी बताया था कि जो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रवैया रखे
जी,
वो हदीस हमें इसमें नजर नहीं आ रही ना उस्ताजा। उन्होंने जब लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने ये भी बताया था इसमें, जो अपने पड़ोसी।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मगर वो इस हदीस में शामिल नहीं है, जज़ाकअल्लाह खैरन। वो एक अलग से एक और हदीस आती है जिसमें ये है कि जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा करे, ठीक है। वो मगर यहाँ पे नहीं, इस वाली हदीस में नहीं जो बुखारी और मुस्लिम में। सही। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास है इन हदीस में? अच्छा, मेरे पास भी यहाँ पे नहीं है। मेरे पास जो हदीस लिखी हुई है उसमें नहीं है। मुझे नहीं पता, आप लोगों के पास शायद दूसरा एडिशन हो बुक का। हाँ जी, आप लोगों के पास हो सकता है दूसरा एडिशन हो बुक का, जिसके अंदर ये भी बात हो, लेकिन जो मेरे पास बुक है उसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फरजाना चौधरी, आप बताएंगी कि इन अहकामात का किताब लुकता से क्या ताल्लुक है?
वालेकुम
अस्सलाम।
जी, इसमें मेहमान का, क्योंकि हक की बात की गई है और मेहमान कितना उसका हक वो ले सकता है किसके घर में जाके, तो उसकी बात है कि अगर वो जाता है और अगर कोई उसका कितना हक है तो वो अपना ले सकता है।
सही सही, ठीक है। यानी ये भी हक की बात है इस वजह से कि उसका कितना हक बनता है। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा अमरीनदार, आप बताएंगी कि कितना हदीस में मेहमान के लिए ड्यूरेशन बताई गई कि वो कितने दिन ठहर सकता है किसी के यहाँ?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतने दिन तक उस्ताजा रुकना चाहिए जितने दिन तक वो उसके ऊपर बोझ ना बन जाए और उनके लिए किसी तकलीफ का सबब ना बने।
सही, शाबाश। यानी मेहमान को ये बात, कोई डेज एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं किए गए कि इतने दिन ठहर सकता और इतने दिन नहीं ठहर सकता, बल्कि ये बता दिया गया जिसमें मेजबान को तंग ना करते वो, ठीक है। इंशाल्लाह ताला यहाँ तक हम करते हैं क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बाकी देख लेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।